ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीर्ये। शन्वतां स्वकथा कृष्णः पुण्यश्रवणकीर्तनः हृदयन्तस्तहि अवधानि वेदनोति सुरेच्छतां नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भगवत्सेवया। भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवती नष्ट की। ओम अज्ञातिमरंदस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपमिदमहं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतवर्गं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं जाग्रजातं सहगणगुणातान्वितं तं चैव साधवैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादां सहगणभक्ता श्री विशाखान्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णद्वेषाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। श्री प्रभुपाद लीलामृत प्रकरण 50 पृष्ठ संख्या 503 लंगड़ा आदमी और अंधा आदमी। आज हम लोग आरंभ करेंगे हयग्रीव प्रभु के प्रकरण से जहां प्रभुपाद के कमरे में प्रविष्ट हुए। परंतु एक पहला पैराग्राफ जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको भी जरा रिवाइज करेंगे। पहला पैराग्राफ है, अनेक अन्य शिष्यों की तरह हयग्रीव ने भी कड़ाई से विधि विधानों का पालन करना छोड़ दिया था। श्री प्रभुपाद ने इस वास्तविकता को स्वीकार कर लिया था कि दीक्षा लेने के बाद भी कुछ शिष्यों को इंद्रिय भोग का तीर आकर्षण रोक पाना कठिन होगा। वे स्नान के अंतर्गत सक्रिय भक्ति का मार्ग त्याग देंगे। प्रारंभिक वर्षों में उन्हें और उनके अनुयायियों को बड़ा आघात पहुंचता था यदि कोई भक्त उनका संग छोड़कर चला जाता था। किंतु जब ऐसी दुर्घटनाएं होती थी तो कभी कभी प्रमुख विश्वसनीय भक्त भी उनके शिकार होते गए। तो प्रभुपाद ने समय के साथ उनको सहना स्वीकार कर लिया। किंतु ऐसे किसी वियुक्त पुत्र या पुत्री के वियोग में प्रभुपाद का दुखी होना कभी बंद नहीं हुआ, विशेषकर जब वे शिष्य या शिष्या ऐसे हों जिसने प्रभुपाद की सेवा किसी विशिष्ट रूप में की हो और उन्होंने उसको अपने स्नेह को अथवा उन्हें पुनः वापस लौटने के खुले स्नेहपूर्ण आमंत्रण को कभी नहीं रोका। बहुत सुंदर बात लिखी गई है, जो उस समय सत्य थी वो आज भी सत्य है। बहुत सारे लोग जो है जिनका टारगेट होता है दीक्षा मिल जाए उसके बाद अपनी मर्जी पे चले, अपने आनंद ले, कोई रोक टोक नहीं हो, कोई रुकावट नहीं हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं हो। तो इसमें जो है एक बात मुख्य है समझने की, दीक्षा शब्द आया है तो दीक्षा शब्द का लिटरल मीनिंग क्या है, दीक्षा का अर्थ क्या है, दीक्षा का अर्थ क्या है, कमिंग फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट, ठीक है, और गुरु के आदेशों का पालन करना, उनके कहे के अनुसार चलना, और गुरु जो है शिष्य को दिव्य ज्ञान देता है। वो तो आपको मिला हुआ है, तो गुरु की आवश्यकता क्या है? सारे लोग 16 माला जप कर रहे हैं, सारे लोग 4 नियम का पालन कर रहे हैं, सारे लोग भागवत सुन रहे हैं, भगवत गीता सुन रहे हैं, भगवत गीता पढ़ रहे हैं, दिव्य ज्ञान को प्राप्त हो रहा है, तो गुरु स्पेशल क्या दिव्य ज्ञान देता है? व्हाट डज इट डू, क्या स्पेशल स्पेशल चीज क्या है? वो तो आप जुड़ रहे हो, स्पेशल चीज क्या है? व्हाट इज सो स्पेशल? वो तो आप कर रहे हो, रोज आ रहे हो, भागवत सुन रहे हो, कीर्तन कर रहे हो, रिलेशनशिप तो डेवलप हो रहा है, बिगिनिंग ऑफ भक्ति वो तो बहुत दिन से हो चुकी है, उसमें गुरु की आवश्यकता कहां से आ गई? गुरु के साथ संबंध आपका बन गया, ठीक है, आपने बना लिया कि गुरु के साथ संबंध, संबंध बनाने का फायदा क्या है? व्हाट इज द अल्टीमेट? कि आप मेरे गुरु हो, मैं आपके शिष्य से, अहम शादी मां त्वाम प्रपन्नम, त्वाम प्रपन्नम शब्द साथ में इस्तेमाल किया, कमिटमेंट तो आपने कर ली, मंदिर में खड़े हो गए, किसी डिवोटी ने करवा दी, किसी ब्रह्मचारी ने करवा दी, किसी कॉन्वेंशनल डिवोटी ने करवा दी, कमिटमेंट तो हो गया। सारे पापों का क्षय कर देना, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्ष दीक्षा में दो शब्द हैं, दी और क्ष। दी का मतलब है दिव्य ज्ञान, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, और क्ष का मतलब है आपके पापों का क्षय कर देना। व्हाट डज इट मीन? सिंफुल एक्टिविटीज को समाप्त कर देना, इसका क्या अर्थ है? या अपने पे ले लेना, मीन्स आई विल बियर योर फ्रूट्स ऑफ एक्टिविटीज, जो आपने सिंफुल एक्टिविटीज करी हैं, जो आपने पाप में कृत्य अभी तक किए हैं, वो गुरु में इतनी सामर्थ्य है कि वो उन पापों को क्षय कर सकता है। मतलब आपको आपको एक कमिटमेंट दे रहा है कि अब भगवान ने कहा ना, डरो मत, मैं तुम्हें पापों से मुक्त कर दूंगा, कहा ना, कहां कहा? सर्वधर्मान प्रत्यजमानेकम शरणम, शरणम इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो दूसरे अध्याय के सातवें श्लोक में चर्चा आ रही है वहां भी यही आ रही है, त्वाम प्रपन्नम, मैं अब आपकी शरण में हूं। तो गुरु की शरण में जाने का अर्थ क्या है? व्हाट डज इट मीन? हम लोगों का हाल क्या? देखिए बड़ी सुंदर बात बताता हूं आपको, यू विल अप्रिशिएट कि कितनी बढ़िया बात चल रही है, दिस विल हेल्प टू अंडरस्टैंड, समझने में थोड़ी सी आसानी रहेगी। अर्जुन कह रहा है हम ये भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, क्या आप जानते हो आपके लिए श्रेष्ठ क्या है, बेस्ट क्या है? डू यू नो? कौन जानता है हम में से, कौन जानता है कि आपके लिए श्रेष्ठ, उचित, बेस्ट क्या है? सेम सिचुएशन जो अर्जुन के साथ आई थी वो हमारे साथ भी आ रही है। हम ये भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीता जाना। या तो हम कौरवों को जीत ले या वो हमें जीत ले, दोनों में से श्रेष्ठ क्या है हमें समझ में नहीं आ रहा। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं आवश्यकता है? यहां कंफ्यूजन है, अर्जुन के माइंड में कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। कंफ्यूजन क्या हुआ कि अगर मैं अर्थशास्त्र के अनुसार चलता हूं, एज पर अर्थशास्त्र मेंशन इन शास्त्र, तो आदताई का वध कर देना ही धर्म है, ठीक है, जो कि छह प्रकार के आदताई बताए गए हैं, धन छीनने वाला, स्त्री छीन लेने वाला, स्त्री हरण करने वाला, आग लगा जला देने वाला, राज्य छीन लेने वाला, हथियार लेके आपको मारने के लिए आ रहे हैं, जो छह प्रकार के आदताई बताए गए हैं उनमें से अगर कोई भी आपके समक्ष आता है तो आपकी ड्यूटी है उसका वध कर देना। आज की तारीख में नहीं है, है? पर अभी भी थिंग्स प्रिवेल, फुर्सत आएगी तो बात करें। अब वो कह रहा है कि मैं अर्थशास्त्र का पालन करता हूं तो मुझे इनका वध कर देना चाहिए, कौरवों का जो मेरे समक्ष खड़े। परंतु धर्मशास्त्र कहता है अहिंसा परमो धर्म, हिंसा नहीं करनी चाहिए। अब मैं कंफ्यूज कि मुझे क्या करना है। एज ए पर्सन अर्जुन इज कंफ्यूज्ड कि मुझे क्या करना चाहिए, अर्थशास्त्र का पालन करना चाहिए या धर्मशास्त्र का पालन करना चाहिए। अब उसने जो है इसके बाद कहा, कार्पण्य दोषो अपद स्वभाव प्रशाम त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेत यक्षे सा निश्चितम रोहितन में शिष्यस्ते हैं शादी मान त्वाम प्रपन्नम। यहां शिष्यता की बात आ रही है कि मेरे अंदर कृपणता का दोष आ गया, मैं पावरफुल हूं, क्षत्रिय हूं, युद्ध में निपुण हूं, परंतु युद्ध करना नहीं चाहता, मतलब कंजूसी आ गई, आई डोंट वॉन्ट टू फाइट, ये कृपणता का दोष। धर्म क्या है मेरे को समझ में नहीं आ रहा। धर्म सम्मूढ़ चेता, धर्म क्या है मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये श्रेय क्या निश्चितम, क्या मेरे लिए श्रेयस्कर है, क्या मेरे लिए उचित है, क्या मेरे लिए बेस्ट है, वो आप मुझे निश्चित रूप से बताएं। आई वॉन्ट टू नो इट, आई वॉन्ट टू क्लैरिफाई वट इज बेस्ट फॉर मी। पूछना है वट इज बेस्ट फॉर मी, आपको पूछना है वट इज बेस्ट फॉर मी तो किससे पूछोगे आप? टू हूम? अपने से सीनियर से, अपने से एडवांस से, जो आपसे ज्यादा प्रबुद्ध है, जो आपसे ज्यादा एनलाइटेंड है, अर्थात शिक्षा गुरु आपका है, उससे आपने ज्ञान लिया कि भाई मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, मुझे आप बताइए मेरे लिए उचित क्या है, उसने गाइड किया। नाउ ही सेज कि मैं आपका शरणागत हूं। शरणागत का अर्थ क्या है? यू से एंड आई डू, शरण में है ना, आप कहें और मैं मानू, इतना होना चाहिए। इसीलिए जब नाम अपराध की चर्चा करते हैं उसमें एक अपराध क्या है? गुरु की अवज्ञा, नाम अपराध। कि अगर गुरु को हम जो है साइड ट्रैक कर किया जा रहा, प्रभुपाद क्या कह रहे हैं? सतगुरु का गोस्वामी लिखते हैं कि हम प्रभुपाद फील कर रहे हैं कि उनको जो है साइड ट्रैक किया जा रहा है, साइड में किया जा रहा है। दिस इज अ प्रॉब्लम कि डिसाइपल जो है उसने कहा कि मैं आपके शरणागत हूं, अब मैं आपका शिष्य हूं। देन अगेन सिचुएशन कम्स। अब अर्जुन कहता है ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। मीन सेंस एंजॉयमेंट जो है प्रिवेल कर रही है। स्वर्ग पर देवताओं के आधिपत्य की तरह इस धन धान संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकूंगा। यही बात यहां चर्चा आ रही है कि हम लोग जो है दीक्षा तो ले लेते हैं। गुरु ने राधिका रमन जी के सामने बैठ के, राधा पारसार्थी के सामने बैठ के, राधा माधव के सामने बैठ के, राधा श्याम सुंदर के सामने बैठ के, राधा गोपीनाथ के सामने बैठ के, अर्थात गौरनिताई भी उपस्थित हैं, जगन्नाथ जी भी उपस्थित हैं और राधा कृष्ण भी उपस्थित हैं, उनके सामने बैठ के यज्ञ करते हुए हमसे कमिटमेंट लिया और एक कमिटमेंट दिया कमिटमेंट लिया कि यू विल नॉट डू एनी सिंफुल एक्टिविटी इन फ्यूचर, अब दोबारा पाप का कार्य नहीं करेगा, और कमिटमेंट लिया कि अब तक जो तुमने पाप के कार्य किए हैं वो मेरे में सामर्थ्य है, मैं उनको क्षमा कर दूंगा, आई विल बी आई विल टेक केयर ऑफ यू। जैसे भगवान ने कहा डरो मत, मैं तुम्हें पापों से मुक्त कर दूंगा, या गुरु कह रहे हैं डरो मत, तुम्हारे जो प्रीवियस पाप है उनसे मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा, पर करंटली अगर तुम और पाप करोगे देन इट विल बी ए प्रॉब्लम। प्रभुपाद जी दुखी हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, सेम सिचुएशन। कि अब जो है अर्जुन कहता है, संजय बता रहे हैं धृतराष्ट्र को कि संजय ने कहा इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाला गुड़ाकेश परंतप शब्द इस्तेमाल किए गए, इसके नाम से शत्रु थर थर कांपते हैं। अरे उसने असुरों को जीता है, निमाचकवादी को जीता है, उसने स्वर्ग लोक के अंदर जाके युद्ध किया है, मतलब ही फॉट फॉर एवरीवन एंड वन, जीता भी। परंतु अब कहता है हे गोविंद मैं युद्ध नहीं करूंगा और चुप हो गया, मींस युद्ध नहीं करूंगा। इसका रेफरेंस टू कंटेक्स्ट अगर लेंगे तो इसका अर्थ क्या हुआ कि मैं आपके शरणागत हुआ जरूर हूं वर्ड्स में, एक्चुअल में नहीं हुआ। कागजी आपने कमिटमेंट दिया कि मैं आपके शरणागत हूं, पर टेक्निकली आप शरणागत नहीं हो। दिस इज व्हाट हैज हैपेंड ओवर हियर, कि प्रभुपाद के कुछ डिसाइपल्स जो हैं जिनके बारे में चर्चा आ रही है कि वो उनके पास इंद्र भोग का तीव्र आकर्षण था, जिसके फलस्वरूप वो जो है प्रभुपाद के बताए हुए नियमों का अर्थात पोस्ट दीक्षा प्री दीक्षा नियमों का पालन किया तो दीक्षा मिल गई, दीक्षा से पहले नियमों का पालन किया तो दीक्षा मिल गई, सिफारिश भी लग गई, टेंपल ने सिफारिश कर दी, बदर बदर हो गया। उसके बाद सोचा वो दीक्षा हो गई, अब कौन पूछेगा, तो मजे करो, अब एंजॉय द वे यू लाइक। पर जो भी आप जो है रूल्स ब्रेक करते हो या जो भी आप सिंफुल एक्टिविटी करते हो, चूंकि गुरु ने कमिटमेंट दी है कि आई विल बियर देम, तो गुरु को बियर करना पड़ता है, दैट टेक्स टॉल ऑन हिज हेल्थ, उनकी हेल्थ के ऊपर जो है एक झटका लगता है, एक परेशानी होती है। दुखी होना क्या है, मानसिक संताप है ना, दुखी होना क्या है, दो शब्द इस्तेमाल करते हैं हम लोग, एक है टेंशन और दूसरा है दुख। तो टेंशन में और दुख में क्या फर्क है, कोई बता है? हाँ जी बोलो, बताइए। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, आपके हाथ में चोट लग गई तो दुख हुआ, हुआ नहीं हुआ, पैर में चोट लग गई, माथे पे चोट लग गई, या किसी ने अपशब्द कह दिया, किसी ने व्यंग बाण चला दिए, किसी ने ताना मार दिया वगैरह वगैरह, तो आपको बड़ा दुख हो रहा है। टेंशन किस बात की, मुझे ताना न मार दे, मुझे चोट न लग जाए, मैं ये काम करने वाला हूं इसमें मेरे को हर्ट ना हो जाए, तो टेंशन हो जाती है। तो टेंशन जो है दुख का प्रिकर्सर है, अर्थात पहले टेंशन होती है, जब टेंशन जो है फ्रक्टिफाई हो जाती है, बन जाती है, तो दुख हो जाता है। अभी चोट लगी नहीं थी तो दुख नहीं था ना, अभी टांग टूटी नहीं थी, पर ये पता है कि मैं सीढ़ी से ऊपर का काम कर रहा हूं, नीचे गिरा तो चोट लग जाएगी, भैया मैं सीढ़ी पकड़ के रखी हो, छोड़ होती हो, मैं गिर जाऊंगा नीचे, पकड़ के रखना जरा ध्यान से। तो टेंशन क्या हो रही है कि सामने वाला जो मेरे साथ नीचे खड़ा है वो ऐसा सीढ़ी छोड़ ना दे, इस बात की टेंशन। अभी दुख नहीं हुआ, दुख तब होगा जब सीढ़ी से गिरेंगे और धार धार को चोट लग जाएगी, तब दुख होगा। दुख होने से पहले टेंशन हो रही है। तो यहां प्रभुपाद जी तो इस बारे में लिखा जा रहा है कि उनको दुख हो रहा, अर्थात टेंशन से ऊपर का काम है। शिष्य छोड़ ना जाए तो टेंशन है, शिष्य छोड़ गए हैं तो दुख है, फर्क आ गया ना दोनों में। अब यहां जो है प्रभुपाद ने कमिटमेंट क्या दिया है कि आप वापस आ सकते हो। और गुस्से में नहीं कहा, कैसे कहा? स्नेह पूर्वक, प्रेम से, कि यू कैन कम बैक। भटक गए हो कोई बात नहीं, मुझे कष्ट हो रहा है कोई बात नहीं। अर्जुन भी तो भटका था। अरे पूरी भगवद गीता सुनने के बाद सारे प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करके 18वें अध्याय के अंत में जाके कहता है, करिष्ये वचनम तव, मैं आपके कहे अनुसार कार्य करने को तैयार हूं। आई विल वर्क एज पर योर इंस्ट्रक्शंस, जैसा आप कहोगे, क्योंकि मेरा मोह नष्ट हो गया है और स्मृति प्राप्त हो गई। अर्थात जो मैं भूल गया था, जो चीज मेरे दिमाग में नहीं आ रही थी, फॉरगेटफुलनेस थी, वो अब लौट आई है और मैं समझ गया हूं मेरे लिए राइट ट्रैक क्या है, सही रास्ता क्या है। हम आज भी जो है गुरु की अवज्ञा करने को तत्पर रहते हैं, मानते हैं क्या उनका कहना? टू बी सिंसियरली फॉलो है, कितने लोग कहते हैं कि सिंसियरली गुरु को फॉलो करते हैं? ऑनेस्टली हाथ उठाए। अपनी डिजायर प्रिवेल करती है, अपनी डिजायर, माई डिजायर इज अबव गुरुज इंस्ट्रक्शंस। हम जो है अब आज हम देखते हैं कि अगर महाराज, हमारे गुरु महाराज हैं, उनकी तबीयत खराब है, उनको कष्ट हो रहा है, तो हम ये नहीं फील करते कि इट इज बिकॉज ऑफ अस, कि हम लोग जो है उनके इंस्ट्रक्शन पर नहीं चल रहे हैं। वी आर नॉट फॉलोइंग हिज इंस्ट्रक्शन, वी आर फॉलोइंग अवर ओन इंस्ट्रक्शन। आई लाइक दिस, कथा आती है उपनिषद के अंदर, कथा है कि शिष्य जो है वो गुरु के पास गया ज्ञान प्राप्त करने के लिए। तो गुरु ने कहा ये 400 गाय हैं, इनको ले जाओ, मरियल सी सूखी सी गाय थी, जब हजार हो जाए तो लौट के आना। अब वो जा गए, गुरु ने कह दिया, जवाला मुनि का पुत्र था, गुरु ने कह दिया तो मुझे जाना है। अरे तेरे सारे शिष्य जो है ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, गुरुकुल के अंदर रह रहे हैं, तू भी रह जा। नहीं, प्रभुपाद ने क्या किया, मैं गुरु सेड कि आई हैव टू प्रीच इन वेस्ट, यही कहा ना। किस उम्र में गए? 69 का एज में, इट्स नॉट एन एज टू ट्रेवल। घुटने काम नहीं करते, कंधे काम नहीं करते, 69 की एज में। और क्या है, 12 साल के पीरियड में वर्ल्ड की 14 बार यात्रा करी, 14 टाइम्स अराउंड द वर्ल्ड। किसके लिए? गुरु की इंस्ट्रक्शन। आई स्टिल रिमेंबर ए स्टोरी वॉज फ्लोटिंग, एक भक्त जो है वो शांतिपुर के अंदर जहां अद्वैताचार्य का घर है उसमें अपना आता है, मंदिर के अंदर पीछे आगे बैठता है, चैंटिंग करता है, रोता रहता है और चला जाता है। He keeps on weeping and chanting। जो पुजारी है उससे थोड़ा स्नेह हो गया, प्रेम हो गया पुजारी से, आपस में बातचीत हुई, चर्चा हुई, चले। एक दिन पुजारी ने पूछा कि आप यहां रोते रहते हो, आप यहां परेशान रहते हो, क्या बात है? अब जप कर रहे हो तो जप करो, रोते क्यों? कहते मेरे गुरु का आदेश है, पश्चिम में जाके प्रचार करो, मैं कर नहीं पा रहा हूं। मैं यहां अद्वैताचार्य से आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूं, ब्लेसिंग्स लेने के लिए आया हूं कि मेरे में इतनी शक्ति दें मैं विदेश में जाके प्रचार कर सकूं। एंड सडनली ही डिसअपीयर्स, गायब। अब गायब हो गए तो पुजारी जो है ठीक है, रूटीन पुजारी की चल रही है, क्या कर रहा है, अपना आल्टर की सेवा कर रहा है, काम चल रहा। वन फाइन डे व्हाट ही फाइंड्स कि मेनी मेनी मीन्स 50-60-70 के आसपास जो है अमेरिकन डिसाइपल्स आ रहे हैं, धोती कुर्ता पहना हुआ है, चुटिया रखी हुई है, सन्यासी बने हुए हैं, कुछ ब्रह्मचारी हैं, कुछ सन्यासी हैं, कुछ लेडीज भी हैं साथ में। एंड दे आर कमिंग थ्रोमिंग अद्वैताचार्य आश्रम, उन्होंने घुस गए उसके अंदर। उनके हाथ में है बैक टू गॉड एट बीटीजी, और बीटीजी में फोटो छपी हुई है प्रभुपाद की। पुजारी वॉज एस्टॉनिश्ड टू सी कि भगवान का जप कर रहे हैं, रो रहे हैं, 69 का एज हो गया था और प्रार्थना कर रहे थे कि मुझे विदेश जाने का मौका मिले, और आज विदेश से भक्त आ रहे हैं वो नहीं आए, रूप वॉज नॉट देयर, 77 के बाद की बात है, तेरो भाव हो चुका था। बट जो बीटी जी के ऊपर सिंह पुजारी ने जो फोटो देखी प्रभुपाद की स्टार्ट बी पे, कि मैं इन्हें समझ नहीं पाया, मैं इन्हें पहचान नहीं पाया कि ये गुरु के प्रति कितना समर्पित हैं। क्या आज हम सब गुरु के प्रति समर्पित हैं? कितने लोग समर्पित हैं? मैं आपको इस होलीनेस गोपाल कृष्ण महाराज का एक किस्सा सुनाता हूं, यू विल अप्रिशिएट। जनकपुरी के अंदर प्रोग्राम हुआ, महाराज आए। पहले महाराज कॉन्वेंशन प्रोग्राम से बड़ा फ्रीक्वेंटली आते थे, टाइम होता था तो टाइम नहीं है, तो हमारे प्रोग्राम में आए तो हमने कहा महाराज यहाँ ना ऐसे ऐसे एक सेंटर बन गया है, बड़े परेशान है, उसके बारे में चर्चा हो गई। स्टार्ट मोर प्रोग्राम, स्टार्ट मोर प्रोग्राम, स्टार्ट मोर प्रोग्राम, चर्चा हो गई। तो किसी भक्त ने जो कि प्रोग्राम लीड करते थे, जो प्रोग्राम के इंचार्ज थे, उन्होंने क्वेश्चन कर दिया कि महाराज गुरु के प्रति शिष्य का भाव क्या होना चाहिए? शिष्य का भाव, शिष्य का समर्पण, शिष्य की शरणागति गुरु के प्रति क्या होनी चाहिए? ये तो बहुत छोटा था, वेरी स्मॉल, ऐसे समझ लीजिएगा कि 14 साल 15 साल पुरानी बात है। तो महाराज ने कहा आंसर इज वेरी सिंपल एंड इट्स ए ब्यूटीफुल आंसर एंड ब्यूटीफुल अंडरस्टैंडिंग, अगर आप समझ सकते हो। महाराज ने कहा कि शिष्य जो है थका हारा गर्मी में लथपथ, पसीने से लथपथ आता है गुरु के कमरे में, प्रणाम करता है, गुरु महाराज उसकी हालत देखते हैं कि इसका मुंह सूख रहा है, होंठ सूख रहे हैं, इसका पसीने से लथपथ हो रहा है, गर्मी में परेशान है, तो एक गर्म दूध का गिलास पकड़ा देता है, टेक इट, नहीं महाराज मुझे तो ठंडा पानी चाहिए। जैसे ये प्रश्न करेगा ठंडा पानी चाहिए, इज आउट ऑफ शरणागति, इज नॉट शरणागति, क्योंकि उसे गुरु पर विश्वास नहीं है कि गुरु के द्वारा दिया गया गर्म दूध भी ठंडे पानी का काम करेगा, उसकी प्यास बुझा देगा। ये फेथ नहीं है, ये फेथ नहीं है, इसलिए वो कहता है मुझे ठंडा पानी चाहिए। और जिस डिसाइपल को, जिस शिष्य को विश्वास होगा, फेथ होगा, श्रद्धा होगी, वो गर्म दूध को ठंडा पानी समझ के पिएगा, प्रिज्यूमिंग कि गुरु द्वारा दिया गया है ये गर्म पानी मेरी प्यास बुझाने में समर्थ है। आई हैव गॉट नो डाउट्स, मुझे कोई शंका संदेह या संशय नहीं। क्या हम उतने शरणागत हैं? आर वी? कितने लोग मानते हैं हम उतने शरणागत हैं? कितने लोग ठंडे पानी की जैसे गर्म दूध पीने को तैयार हैं? वी आर नॉट। अभी अभी हमारे में वो परिपक्वता, वो परफेक्शन, वो एडवांसमेंट नहीं आया। तो यहां जो है जब हम गुरु के आदेश की अवज्ञा करते हैं, गुरु के आदेश का पालन नहीं करते हैं, तो गुरु को कष्ट होता है, गुरु को तकलीफ होती है, क्योंकि उसने आपके पापों का क्षय किया है। और गुरु के आदेश का पालन न करना इटसेल्फ पाप है, ये पुण्य नहीं है। इट्स नॉट ए स्पिरिचुअल एक्टिविटी, इट्स नॉट ए आध्यात्मिक एक्टिविटी, इट इज ए मटीरियल एक्टिविटी। कि आप जो है कहें जी हाँ कहते रहते हैं, गुरु तो कहते रहते हैं, कहने से क्या होता है? मैं कोई कम अकलमंद हूं? आई नो एवरीथिंग, मैं सब जानता हूँ, सब समझता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मेरे को सब आता है। हाँ ठीक है, दीक्षा मैंने ले ली इसलिए कि चलो भगवान से मेरी तार जुड़ गई, वो मेरे लिए जरूरी था, पर बाकी कार्य करने मेरे लिए आवश्यक नहीं है, क्योंकि मैं खुद मुख्तार हूँ, खुद समर्थ हूँ, मैं कर सकता हूँ, ये फीलिंग रहती है हम लोगों में। गुरु के प्रति समर्पण का अर्थ है गुरु के आदेश का अक्षरश पालन करना, अक्षरश। मैं आपको अभी लेटेस्ट एग्जांपल देता हूं। मैं अभी मायापुर गया था, हमारे एक भक्त हैं पिछली रोड पे रहते हैं, अर्जुन हरि प्रभु, उन्होंने मुझको अपना फ्लैट ऑफर किए कि मेरे फ्लैट में आप रह सकते हो। जिस दिन मैं पहुंचा मेरे को फोन आ गया, प्रभु जी महाराज का आदेश आ गया है, मायापुर छोड़ के वृंदावन आ जाओ। ये बस वृंदावन में भी घर है, तीन घर है मायापुर में। मायापुर जैसी जगह पे जो चला जाता है लौट के आना नहीं चाहता, पर महाराज का आदेश है दैट यू हैव टू कम टू वृंदावन। रातों रात पैक किया, एक दिन में पैक करके मेरे पहुंचने से पहले सवेरे वहां से कैब पकड़ी और कलकत्ता एयरपोर्ट, वहां से अभी मुझे वृंदावन मिले थे 15 दिन पहले। बोले महाराज का आदेश है यहाँ पे 2 साल रहना, मायापुर में जो है दर्शन करने जाऊंगा और रहूंगा वृंदावन में। डेडिकेशन, समर्पण, शरणागति, वो है। तो यहां पे चर्चा आ रही है कि हाउ मच आर वी सरेंडर्ड। अब इसके बाद जो है हयग्रीव एक ऐसा शिष्य था जो प्रभुपाद के पास 1966 के ग्रीष्म न्यूयॉर्क में आया था। उसने प्रभुपाद की अमूल्य सेवा की थी किंतु अंततः कृष्ण भावनामृत के सरल किंतु कड़े सिद्धांतों का पालन नहीं किया। अब भौतिक जीवन का उतार चढ़ाव देखने के बाद उसने अपने प्रिय गुरु महाराज के पास पुनः लौटने का संकल्प किया। हयग्रीव प्रभुपाद के कमरे में प्रविष्ट हुआ। यह आपका वही पुराना हयग्रीव है, प्रभुपाद उसने कहा, ससकता हुआ फर्श पर गिर पड़ा। प्रभुपाद ने उसे एक माला दी और पूछा उसका परिवार कैसा है और वह कैसा है। तब अन्य भक्तों के भी प्रभुपाद ने वर्णन किया कि हयग्रीव किस तरह कृष्ण के द्वारा उनके पास संसार भर में कृष्ण भावनामृत फैलाने की सहायता के लिए भेजा गया था। जब हयग्रीव ने कहा कि वह प्रभुपाद को एक दिन के लिए भी नहीं भूला था तो प्रभुपाद ने उत्तर दिया, मैं भी तुम्हें नहीं भूला, मैं सोचा करता था क्या हयग्रीव चला गया है, मैं इसी तरह सोचा करता था। प्रभुपाद की वाणी रुद्ध हो गई, गला रुद्ध हो गया, भूला नहीं गया, उनके नेत्रों में आंसू भर गए और प्रभुपाद बोल नहीं पाए। अंत में उन्होंने हरेक को कमरे से चले जाने को कहा। प्रभुपाद और हयग्रीव प्रतिदिन मिलने लगे, कभी कभी 2 या 3 घंटों के लिए भी। तुलनात्मक अध्यात्मवाद फिर आरंभ हो गया था, श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद के साथ साथ चलने लगा था। हयग्रीव फिर अपने मूल स्थान पर श्री प्रभुपाद के चरण कमलों में लौट आया था। आज भी होता है, पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं, मुझे मालूम है। कुछ लोग ने गुरु महाराज को छोड़ा नहीं परंतु पकड़ा भी नहीं, दूसरी संस्था में चले गए और फिर 2-4-5 साल के बाद लौटकर वापस आए। आई गॉट प्रैक्टिकल एंड लाइव एग्जांपल्स, आई नो दोस पीपल, मैंने उन्हें प्रीच किया है, मैंने उनको समझाया है सब। कुछ लोग ऐसे हैं जो भी हमारी समझ से बाहर है, परंतु मेनी पीपल वो आर अंडरस्टैंडिंग, गलती से बाय मिस्टेक बाय अट्रैक्शन किसी वजह से वो छोड़ गए थे परंतु लौट के फिर आए हैं। हाँ, लौटने में 4-5 साल लग गए, 4-5 ईयर्स का टाइम लगा। यद्यपि प्रभुपाद ने जीबीसी को लिख दिया था कि विस्तार की समस्याओं को स्वयं हल कर लिया करें, किंतु उनका अपने आप को समस्याओं से अवगत रखना जारी रहा क्योंकि उनके सहायक अनिच्छापूर्वक सारे खराब समाचार उन तक पहुंचाते रहते थे। एक दिन मधुद्वी स्वामी से एक तार मिला जो संयुक्त राज्य के एक क्षेत्र में इस्कान के प्रभारी थे और जीबीसी के उत्साही सदस्य थे। मधु दिशा को इस्कान में अपनी मजबूत स्थिति बनाए रखने में बड़ी कठिनाई हो रही थी। अधिकतर मामलों में प्रभुपाद के शिष्यों की कठिनाई विषया शक्ति की ओर उनकी रुचि से होती, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज डिपेंडेंट ऑन मटीरियल एक्टिविटीज एंड अट्रैक्शन मोर टूवर्ड्स मटीरियल एक्टिविटीज। भौतिक संसार की तरफ आकर्षण ज्यादा, पर अध्यात्मिक में कार्य जरूर हो रहा है पर भौतिक संसार के अनुसार हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग हो रहा है। प्रभुपाद के शिष्य उनके विरुद्ध कभी नहीं हुए थे, ना ही वे कृष्ण भावनामृत के वैचारिक निष्कर्षों को प्रायः निषेध करते थे, वे केवल माया के चक्र में फंस जाते थे। माया बड़ी ठगनी है, आपको अट्रैक्ट कर लेती है, लोग उसके चक्कर में फंस जाते हैं। मधु दिशा ने तार द्वारा जीबीसी से त्याग पत्र दे दिया था। यद्यपि वह भक्ति में बना रहना चाहता था किंतु आध्यात्मिक दुर्बलता के कारण वह त्याग पत्र देने के लिए अपने आप को विवश अनुभव कर रहा था। तार में कोई विस्तार नहीं था किंतु प्रभुपाद तक अफवाह पहुंची थी, वह किसी प्रेम जाल में फंसा था, उसने मंदिर छोड़ दिया था। प्रभुपाद ने कहा पाश्चात्यों के संन्यास लेने के विरुद्ध यही उनके गुरु भाइयों का मुख्य तर्क था, वे अपनी कठोर प्रतिज्ञाओं को निभा नहीं पाएंगे। उन्होंने कहा उनके जर्मन गुरु भाई ने भी स्त्रियों के साथ गहरा संबंध स्थापित करके कुछ विकलता फैलाई थी। इट्स ऑल अट्रैक्टेड टुवर्ड्स माया। अभी भी हमारे पास लाइव एग्जाम्पल्स हैं, मैनी सन्यासीज हैव फॉलन डाउन बिकॉज ऑफ ऑल दिस, उनका फॉल डाउन हुआ है। अब प्रभुपाद ने उदास मन से कहा मैं क्या कर सकता हूं, मुझे सभी तीसरे दर्जे के लोगों के साथ काम करना पड़ रहा है, थर्ड क्लास पीपल, हाउ टू वर्क विद थर्ड क्लास पीपल, सभी धूर्त हैं और मूर्ख हैं, सभी धूर्त मतलब धोखेबाज, चालाक और पुलिस मूढ़, केवल कृष्ण की कृपा से ही काम चल रहा है। प्रभुपाल ने मधु दिशा को जवाब में तार भेजा कि वे आए और उनसे बात करे। यद्यपि उन्होंने अपनी भावनाओं पर काबू रखा किंतु भक्तों ने देखा कि वे उद्विग्न थे। किसी पुत्र के मजबूत स्नेह बंधन का यह दूसरा उदाहरण था, ऐसे पुत्र का जिसने उनकी विस्मयकारी सेवा की थी, ऐसे शिष्य का जिसे उन्होंने धैर्य पूर्वक सालों प्रशिक्षित किया था। प्रभुपाद का सक्रिय प्रबंधन कार्य से अवकाश ले लेना फिर संदेहास्पद लगने लगा था। माता का पुत्र होता है ना, बड़ा हो जाता है, शादी हो जाती है तो बहू आ जाती है, पुत्र को ले जाती है, तो माता को कितना कष्ट होता, मैंने तुझे पाला, मैंने बड़ा किया, मैंने पढ़ाया, मैं रातों जागी, और एक दिन की बीवी आई और तू मुझे छोड़कर चला गया। मतलब वियोग, जब आप किसी को ट्रेन करते हो, किसी को तैयार करते हो, किसी को स्नेह देते हो, किसी को वात्सल्य देते हो, और जब उससे वियोग होता है तो कितना कष्ट होता है। सेम थिंग प्रभुपाद इज फीलिंग हियर, कि ऐसे शिष्य का जो जिसे उन्होंने धैर्य पूर्वक सालों प्रशिक्षित किया था को छोड़ के चला जा रहा है, इज लिविंग। तो ये जो कष्ट है, ये कष्ट जो है वो गुरु को झेलना पड़ता है जब हम गुरु की अवज्ञा करते हैं। दैट इज व्हाई इट इज अ नाम अपराध, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नाम अपराध, गुरु की अवज्ञा। गुरु धारण किया है तो माइंड को फिक्स करके धारण करना है कि आई हैव टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस। गुरु ने कहा वहां धूप में खड़े हो जाओ, एक घंटे बाद तुम्हें बुलाऊंगा, एक घंटे धूप में खड़े हिलेंगे नहीं वहां से, यू विल स्टैंड ओवर देयर। I still remember, you must have heard the name, Ajanma Krishna. कितने लोग जानते हैं उनके बारे में, जानते हैं ना? He is running the base Bhakti Vedanta Academy for Culture and Education. बहुत सारे सेंटर्स के इंचार्ज हैं। 1998 में I came in his contact. संबंध बना तो मोहन रूपा प्रभु ने मेरे को, तब यूथ के इंचार्ज होते थे, मोहन रूपा प्रेसिडेंट नहीं थे, यूथ के इंचार्ज थे, तो उन्होंने अलॉट किया कि जन्माष्टमी पे दो भक्त आपकी सेवा करेंगे, उन्होंने एक अजन्मा कृष्ण था। दिस वाज माय फर्स्ट इंटरेक्शन विद हिम इन 1998 की बात है। मेरे साथ रहे, मेरे पास सारे मंदिर की जिम्मेदारी थी, मैं फेस्टिवल का चेयरमैन था, सभी कुछ मेरी तत्वाधान में हो रहा था, तो ही वॉज टू अकंपनी मी, मेरा साथ देने के लिए कि जहां आप जाएंगे मैं आपके साथ हूँ, किसी के पास भेजना है, किसी को लेना है, किसी को देना है, तो उनके पास मेरी उनके भी इंस्ट्रक्शन रहती है। टेम्पल हॉल में जाना है मुझे सर्वे करने के लिए और चेक करने के लिए। मैंने उनसे कहा अजन्मा प्रभु, तब अजन्मा नहीं था, उनका नाम था अरूप बैनर्जी, अरूप बैनर्जी। मैं कहा प्रभु मैं जहाँ अंदर जा रहा हूँ, आप यहीं खड़े रहिएगा, कहीं बाएं दाएं नहीं हो जाएगी, मैं 5 मिनट में आया। टेम्पल हॉल में प्रॉब्लम्स थी, मुझे सेटल करने में 1.5 घंटा लग गया। 1.5 घंटे के बाद में आया तो जिस खंबे के साथ मैं खड़ा करके गया था उसी खंबे पे खड़े थे, बाएं दाएं नहीं हुए, 1 इंच भी इधर नहीं। इस खंबे पे खड़ा किया 1.5 घंटा इसी खंबे के पास खड़े, वरना आदमी कहता चलो गरुड़ स्तंभ पे घूम ही लेते हैं, गरुड़ स्तंभ पे ही है, बाएं दाएं घूम लेते हैं, चलो कोई बात नहीं। बट ही केप्ट ऑन स्टैंडिंग देयर। जो मैंने उनके पास चीज रखवाई थी कि मैं अंदर मंदिर में जाऊंगा तो नहीं अच्छा लगेगा, इसको बाहर केयर लेना, मैं आके यहां से ले लूंगा, वो उसी की केयर लेते रहे, एंड ही केप्ट ऑन स्टैंडिंग। ये डेडिकेशन जो है, एक तरीके से उन्होंने स्वीकार किया कि मेरे सीनियर हैं, मुझे इनको फॉलो करना है, मुझे इनके इंस्ट्रक्शन पे चलना है, दैट्स ऑल। बिकॉज ही वॉज इंस्ट्रक्टेड बाय हिज शिक्षा गुरु। मोहन रूपा प्रभु शिक्षा गुरु थे, उन्होंने कहा भाई इनके साथ रहना आपको, आज इनकी सेवा करनी जन्माष्टमी के दिन में एंड होल डे। और उसके बाद कई साल तक जब भी मैं वीआईपी प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट करता था, आई यूज टू कॉल हिज टीम फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। डिवोटीज आते थे कम से कम 100 उनके बेस कैंप्स, 100 लोग मेरे साथ वीआईपी डिस्ट्रीब्यूशन करते थे, सेवा मिलती थी। एंड मॉर्निंग 8 o'clock टू नाइट 12 o'clock ही वॉज सुपरवाइजिंग ऑल द यूथ एंड हिज डिवोटीज निर्जला रख। वो उस पंडाल से बाहर नहीं गए कि मैं पंडाल से बाहर चले जाऊं, मीन्स आई वॉज सो रिलीव्ड कि देयर इज समबडी हु इज टेकिंग केयर ऑफ प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑन माई बिहाफ, आई कैन डू माई एक्टिविटीज। तो जो इंस्ट्रक्शन दे दिए उनके गुरु ने, शिक्षा गुरु से अल्टीमेटली शिक्षा गुरु रिप्रेजेंटेटिव है दीक्षा गुरु का, और दीक्षा गुरु रिप्रेजेंटेटिव है चैत्य गुरु का जो हृदय में बैठे हैं। तो ही फॉलोज द इंस्ट्रक्शन वेरी क्लियरली वेरी डेडिकेटली। तो क्या हम लोग जो है गुरु के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने के लिए डेडिकेशन है हमारे अंदर? आर वी दैट डेडिकेटेड? आर वी दैट सिंसियर? यहां सिंसियरिटी ना होने से प्रभुपाद को कष्ट हो रहा है, परंतु जब वो लौट के आ गए हैं तो प्रभुपाद इज वेरी हैप्पी दैट ही हैज कम बैक। जो कहते हैं देर आयत दुरुस्त आयत, देर से आए पर ठीक आए। देरी जरूर लगी, टाइम जरूर लगा, समय जरूर लगा, परंतु अल्टीमेटली ठीक रास्ते पर आ गए। इसके बाद का जो टॉपिक है बहुत लंबा है, उसको न करके कर दें, 10-15 मिनट लगेंगे। चलो, यद्यपि प्रभुपाद ने जीबीसी को लिख दिया था कि विस्तार की समस्याओं को स्वयं हल कर लिया करें, किंतु उनका अपने समस्याओं को ये तो हो गया है। श्री प्रभुपाद ने कहा मैं धूर्तों बदमाशों अयोथा किन्हीं को भी कृष्ण भावनामृत के प्रसार में लगाने का प्रयत्न कर रहे थे, नियमों का कड़ाई से पालन करने वाले अनुयायियों को मिलना कठिन हो रहा था, पर वे कर भी क्या सकते थे। उन्होंने कहा कि संन्यास से किसी का पतन होने से वह ग्रस्त बन जाता है, किंतु बिल्कुल त्याग करके किसी को जाना नहीं चाहिए। हरिशौरी ने चतन चरतामृत से छोटा हरिदास महाप्रभु चैतन्य की कहानी का उल्लेख किया। हरिशौरी ने कहा उस कहानी से तो यही प्रकट होता है किसी पतित सन्यासी का भगवान चैतन्य की कृपा पुनः प्राप्त करना बहुत कठिन था। प्रभुपाद ने उत्तर दिया जो सन्यास से पतित होता है उसे वनताशी कहते हैं, अर्थात जो वमन करके उसे फिर से खा लेता। हरिशौरी ने कहा फिर यदि ग्रस्त बन जाते हैं तो भगवान चैतन्य की कृपा कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ए सन्यासी बिकमिंग ए ग्रस्त। प्रभुपाद ने कहा यदि गुरु महाराज ये सुविधा प्रदान करते हैं और ऐसी व्यवस्था कर देते हैं तो कृष्ण उस व्यवस्था को स्वीकार कर लेंगे और बाद में पुनः सन्यासी बन सकता है। प्रभुपाद ने कहा ऐसा पहले भी हो चुका था, और प्रभुपाद ने कई उदाहरण दिए जब उन्होंने पतित सन्यासियों को विवाह कर लेने भक्ति बने रहने को कहा था। उन्होंने कहा वस्तुतः बड़ी लज्जाजनक स्थिति है, किंतु किया क्या जाए। भारत में मेरे गुरु भाई और सन्यासी इस बात के लिए मेरी आलोचना करते हैं कि मैं पाश्चात्यों को ब्राह्मण और सन्यास दीक्षा दे रहा हूं। पश्चिम के देशों में अष्ट विग्रहों की स्थापना करता हूं और स्त्रियों को मंदिरों में रहने की अनुमति देता हूं, किंतु ये सब करते हुए भी मैं कृष्ण भावनामृत का प्रसार कर रहा हूं। इतनी कड़ाई करने के बाद भी वे कुछ नहीं कर रहे। यदि मैं भेदभाव करूं तो फिर अकेला हो जाऊं जैसा कि मैं वृंदावन में था, फिर मैं चूहा बन जाऊंगा। नोबडी विल टेक केयर ऑफ मी। हरिशौरी ने कहा ऐसा लगता है इससे पहले हमारा शुद्धिकरण हो कई पीढ़ियां बीत जाएंगी। रूपा ने उत्तर दिया यदि कोई निष्ठावान है तो एक पीढ़ी में ही उसका शुद्धिकरण हो सकता है। उस शाम को जब रूपा इस तैयारी में थे कि पूरी रात अनुवाद में बिताएंगे, मधु दिशा का विचार भी उनके मन पर छाया रहा। फिर भी वे गजेंद्र हाथी का संकट शीर्षक अध्याय से श्लोकों का अनुवाद करने लगे। अध्याय में हाथियों के राजा गजेंद्र का वर्णन था जो स्वर्ग में रहता था, और एक दिन गजेंद्र अपनी पत्नियों के साथ नदी में स्नान कर रहा था, तब मगर ने अक्षमात उस पर आक्रमण किया। मगर ने अपने जबड़े गजेंद्र के पैर में जमा दिए। यद्यपि गजेंद्र बड़ा शक्तिशाली था, किंतु जल में वह मगर के मजबूत पाश से अपने को मुक्त नहीं कर सका। श्री प्रभुपाद ने लिखवाया इसके पश्चात जल में सींचे जाने और कई वर्षों तक संघर्षरत रहने के कारण गजेंद्र की मानसिक शारीरिक और इंद्रिय शक्तियों में बड़ा ह्रास हो गया। इसके विपरीत जल का जीव होने के कारण मगर की शारीरिक और इंद्रिय शक्तियों में उसके उत्साह में वृद्धि होती गई। रूपा ने कहा, मैं इसे शीघ्रता से समाप्त कर सकता हूं, किंतु मुझे सोचना है कि इसे सामान्य व्यक्ति के लिए कैसे तैयार करूं, इस घटना का महत्व वे कैसे प्रतिपादित करें जो लाखों वर्ष पूर्व दो पशुओं के बीच किसी आकाशीय लोक पर घटित हुई थी। उसे कैसे स्पष्ट किया जाए और सुबोध बनाया जाए, उसे सार कल्पित संस्कृत शब्दों विश्वनाथ चक्रवर्ती, सनातन गोस्वामी और भक्ति सिद्धांत सरस्वती जैसे आचार्यों के परंपरा अनुरूप टीकाओं का मर्म कैसे ग्राह्य हो, अपने कक्ष में शांत एकांत में श्री प्रभुपाद अपना तात्पर्य दिखाने लगा। हाथी और मगर के संघर्ष में एक अंतर यह था, यद्यपि हाथी बहुत अधिक शक्तिशाली था किंतु अन्य के स्थान जल में था। 1000 वर्ष तक युद्ध के दौरान उसे कोई भोजन नहीं मिला तो उसका शारीरिक बल क्षीण हो गया, और चूंकि उसका शारीरिक बल क्षीण हो गया फिर उसका दिमाग भी कमजोर हो गया, इंद्रियों की शक्ति घट गई, किंतु जल का जीव होने के कारण मगर को कोई कठिनाई नहीं थी, वह अपना भोजन प्राप्त कर रहा था, इसलिए उसे मानसिक शक्ति और इंद्रिय प्रोत्साहन मिल रहा था। अतः हाथी का बल क्षीण होता गया और मगर अत्यधिक बलशाली बनता गया। अब इस घटना से हमें शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं कि माया के विरुद्ध युद्ध में हमें और आपको ऐसी स्थिति में नहीं डालना चाहिए जिसमें हमारी शक्ति उत्साह और इंद्रियां जोरदार ढंग से युद्ध न कर सकें। हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन ने वास्तव में माया की शक्ति के विरुद्ध घोषणा खड़ी कर दी है, जिस माया के फंदे में सभी जीवात्मा सभ्यता की भ्रामक धारणा को पकड़े सड़ रहे हैं। कृष्ण भावनामृत आंदोलन के सैनिकों के लिए आवश्यक है कि वे सदैव शारीरिक शक्ति उत्साह और इंद्रिय बल से समन्वित हों। दिस इज फॉर ऑल ब्रह्मचारीज कॉन्वोकेशनल डिवोटीज। अपने को सक्षम बनाए रखने के लिए उनको अपने जीवन की सामान्य परिस्थिति में रखना जरूरी है, नेचुरल सर्कमस्टांसेस, अननेचुरल में नहीं। दे हैव टू लिव इन नेचुरल सर्कमस्टांसेस। प्रभुपाद ने आगे लिखा है, सामान्य जीवन क्या है, हरेक के लिए एक जैसा नहीं है, वर्णाश्रम विभाजन है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ब्रह्मचर्य ग्रस्त वानप्रस्थ और संन्यास, विशेषकर इस कलयुग में व्यक्त यही है कि संन्यास न लिया जाए, ट्राई टू अवॉइड। इससे हम समझ सकते हैं कि इस युग में संन्यास आश्रम वर्जित है क्योंकि लोगों में शक्ति नहीं है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने 24 वर्ष की अवस्था में संन्यास लेकर एक दृष्टांत प्रस्तुत किया था, किंतु सार्वभौम भट्टाचार्य ने श्री चैतन्य महाप्रभु को भी उपदेश दिया था कि अत्यंत सावधान रहें क्योंकि उन्होंने अल्प आयु में संन्यास ग्रहण कर लिया था। उपदेश देने के लिए हम युवा बालकों को संन्यास दे रहे हैं किंतु वास्तव में अनुभव किया जा रहा है कि वह संन्यास के योग्य नहीं। इसमें कोई हानि नहीं है यदि कोई सोचता है कि संन्यास के योग्य नहीं है, यदि वह बहुत अधिक आमातुर हो तो उसे आश्रम में जाना चाहिए जहां कामुकता के लिए अनुमति है, अर्थात गृहस्थ आश्रम। एक स्थान में कमजोर पाए जाने का तात्पर्य नहीं है कि माया के मगर के विरुद्ध युद्ध बंद कर दो। उसे चाहिए कि कृष्ण के चरण कमलों की शरण में जाए, जैसा कि हम गजेंद्र को जाते देखेंगे, साथ ही काम तृप्ति के लिए हम ग्रस्त भी बने रह सकते हैं। युद्ध बंद करने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए चैतन्य महाप्रभु की संस्तुति है, स्थाने स्थिता श्रुति कथान तनु वांगमनु भी। भक्ति को जो भी आश्रम ठीक लगे उसमें रह सकता है, किंतु आवश्यक नहीं है कि वह संन्यास ले ले। यदि कोई कामातुर है तो वह ग्रस्त आश्रम में प्रवेश कर सकता है, किंतु उसे युद्ध जारी रखना चाहिए जो दिव्यानुभूति की स्थिति में है। उसका दिखावटी संन्यास लेना कोई श्रेय की बात नहीं है। यदि संन्यास अनुकूल ना पड़े तो ग्रस्त बनकर माया के विरुद्ध बलपूर्वक युद्ध किया जा सकता है, किंतु युद्ध बंद करके पलायन नहीं करना चाहिए। मीन्स यू कैन फाइट विद माया, डू लॉट ऑफ प्रीचिंग, लॉट ऑफ बुक डिस्ट्रीब्यूशन, बहुत सारी किताबों का वितरण करें, बहुत सारे ग्रंथों का वितरण करें, प्रचार करें, क्योंकि प्रचार ही सारे है। वो आवश्यक नहीं है कि ब्रह्मचारी या सन्यासी रहते हुए करना है, गृहस्थ रहते हुए भी आप प्रचार कार्य में पूर्ण सहयोग दे सकते हैं। माया की शक्ति से सीधा सामना करके श्री प्रभुपाद ने अपने अनुभव को प्रस्तुत किया। उन्होंने मधु विषय का मामला लिया और उनके भौतिक आयामों से उसका परिष्कार किया और सभी स्थानों में सभी मनुष्यों के लिए उपदेश स्वरूप बनाकर अमर कर दिया। प्रभुपाद का कार्य अपने शिष्यों को मजबूत बनाना था जिससे उनका पतन ना हो। गृहस्थ आश्रम में इंद्र तृप्ति का उनका मगर बहुत बलशाली था और अवैध यौन संबंध पाशात लोगों का स्थायी रोग था। इसी पर उनका पालन पोषण हुआ था और वे इसमें फंसे हुए थे। उनका समाज उन्हें प्रोत्साहित करता था, इस मानसिकता में परिवर्तन लाना अत्यंत कठिन था। अतः लिखने के साथ साथ प्रभुपाद को अपने शिष्यों को संभालने और उन्हें सशक्त प्रचारक बनाने के लिए यात्रा करते रहना, उपदेश देते रहना जारी रखना जरूरी था। जिस प्रकार प्रभुपाद ने पश्चिम में प्रचार करने के उद्देश्य से वृंदावन के राधा दामोदर मंदिर में पहले लिखना छोड़ दिया था, उसी प्रकार वे प्रचार के लिए हवाई में अपने विश्राम स्थल में लिखना छोड़ सकते थे, किंतु वे जहां भी जाते किसी भी हालत में होते वे लिखना जारी रखने के लिए तैयार रहते। उन्होंने हवाई में एक महीना रहने की योजना बनाई थी, प्रस्थायी रूप से नहीं। उनके शिष्य प्रेरणा और शक्ति के लिए उन्हें मिलना चाहते थे और जब तक वे जीवित थे यही उनका उद्देश्य था। यह शब्द आया है एक महीने रहने की योजना, पर स्थायी नहीं है कि रहेंगे ही। इट इज ऑल सब्जेक्ट टू रिक्वायरमेंट, कि वहां की रिक्वायरमेंट क्या है। लिखना है तो कहीं भी लिख सकते। हालांकि प्लान ये था कि एक महीना शांत रह के बड़े एकांत वातावरण में हवाई में लिखूंगा, पर यहां क्या है कि वे प्रचार के लिए हवाई के अपने विश्राम स्थल में लिखना भी छोड़ सकते थे। ही कुड चेंज हिज माइंड, क्योंकि माइंड में बस फर्स्ट चीज क्या थी, प्रीचिंग। प्रीचिंग जो चैतन्य महाप्रभु का इंस्ट्रक्शन है, प्रीचिंग इज द एसेंस, और ये उनके मन के अंदर पक्का विचार था कि मुझे प्रचार पहले करना है, लिखना बाद में भी हो जाएगा। बट ही रोट वंडरफुल बुक्स, 80 किताबें लिखी उन्होंने, जिनसे आज भी हम ज्ञान प्राप्त करते हैं और ज्ञान प्राप्त करते थे और ज्ञान प्राप्त करते रहेंगे। श्री गोपाल की। गौरव प्रेमानंदी।